हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन संस्था के ओर से आयोजित आज के सत्संग में सायंकाल को आप सबका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। शुदा जी और श्री राजू जी वागनानी का, जिन्होंने अपने निवास स्थान पे आप सबको आध्यात्मिक हरि कथा श्रवण का और हमको कहने का अवसर दिया है। हमारी आइडेंटिटी डबल है, हमारी हम कंपोजाइट जीव है, हम दो चीज का मिश्रण है। हमारी जो आइडेंटिटी है, एक ये हमारा शरीर है और जिस सत्ता से ये शरीर चलता है वो आत्मा है। दूसरा ये पहला बेसिक, ये इसको कहते हैं बॉटम लाइन है स्पिरिचुअलिटी की, शरीर और आत्मा। ये अगर जानकारी नहीं है तो आदमी पशु जैसा है। आहार निद्रा भय मैथुन्य पशु भी समाना। आहार का मतलब भोजन करना, निद्रा का मतलब सोना। आहार निद्रा भय अपनी रक्षा के लिए सुरक्षा करना, मैथुन्य का मतलब भोग करना, स्त्री पुरुष संबंध होना, ये तो पशुओं में भी होता है। अगर ये ज्ञान नहीं है कि शरीर और आत्मा दो चीजों के हम बने हुए हैं तो मानव का स्तर ही नहीं है, पशु के स्तर के ऊपर लोग हो जाता है। ये संसार, ये शास्त्र का निर्णय है। तो पहले कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सरल एक श्लोक है भगवद गीता में, वहां उसको देही नो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहयते। इस देही के अंदर, इस देही का मालिक अलग है। ये देही छोटे बच्चे का होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ापे में जाता है, फिर यह समाप्त होता है। अब मैं बच्चे के शरीर में आज से 50 साल पहले था, मुझे याद है, लेकिन मेरा शरीर कहाँ है? बच्चे का समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिखा सकता है अपना बच्चे का शरीर? नहीं दिखा सकता है। कहाँ गया? खत्म हो गया। केवल फोटो में बता सकते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा फोटो है, ये कह सकते हैं, दिखा नहीं सकते। जवानी थी आज से 20 साल पहले, कहाँ चली गई? स्कूल कॉलेज पढ़े, बच्चे शादी, ये सब थी, कहाँ गई? खत्म हो गई। अब बुढ़ापे का शरीर है और ये शरीर छूटे, तो मैं तो अभी बैठा हूँ ना, मैं बच्चे के शरीर में था, मैं तो बैठा हूँ। जो मैं हूँ तो वो तो अभी भी हूँ। बच्चा था मैं था, जवान था मैं था, बूढ़ा हूँ मैं हूँ। तो ये शरीर नहीं रहेगा तब भी तो मैं बचूंगा ना। जब ये तीन शरीर चले गए तब भी मैं बैठा हूँ। धीरज का मतलब बुद्धिमान, धीरज का मतलब जिसमें धीरज है, जो सत्य को समझने का अधिकारी है, वो ऐसे शरीर के परिवर्तन के ऊपर मोहित नहीं। भाई कोई बच्चा जवान होता है कोई रोता है क्या? कोई जवान बूढ़ा होता है तो कोई रोता है क्या? नहीं। तो ये तो शरीर में परिवर्तन तो है ना, तो एक दिन तो और एक परिवर्तन होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। ये पुराने कपड़े फटते हैं, उतार देते हैं, नए पहन देते हैं। कितने जीवन में आपने कपड़े बदले, कितने ड्रेसेस हमने बदली है इस जीवन में अपने आंखों के सामने, ऐसे कितने शरीर इस आत्मा ने बदले। इतना सुंदर और इतना सिंपल एग्जाम्पल दिया है कि कितने कपड़े आदमी बदलता है जीवन भर में, इतने शरीर आत्मा बदलती है समय समय के ऊपर। भाई सारे कपड़े कितने बदलते हैं हम? तो ये तो वासांति का मतलब कपड़े, जीर्णानी का मतलब बूढ़े हो गए। वासांति जीर्णानी यथा विहाय, जैसे उसको फेंक देते हैं, नवानी गृहणाति हम नए ले लेते हैं, तथा शरीरानी व्या, ऐसे जब शरीर जगा जाता है तो आत्मा नया शरीर को धारण कर लेती है, कर्मों के अनुसार। तो हमारे पास दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए, शरीर का ज्ञान होना चाहिए और आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। शरीर को चलाने का ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल खुले, जाओ पढ़ो ताकि कमाओ और शरीर को चलाओ, ये तो ठीक है। लेकिन आत्मा का ज्ञान कहाँ मिलता है? पूरे विश्व के अंदर दुख से कहना पड़ता है कि एक भी ऐसा यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है जहां आत्मा का ज्ञान प्राप्त होने का कोई संभावना हो, है ही नहीं कहीं। और जहां आत्मा का ज्ञान नहीं है तो आदमी केवल शरीर के स्तर के ऊपर जीता है, शरीर तक ही सोचता है, उसको भविष्य का भी पता नहीं होता है, तो इसलिए वो अशांत रहता है हमेशा। शांति आत्मा का गुण है, आनंद आत्मा का गुण है, शरीर का गुण नहीं। शांति जो सब कहते हैं हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो शरीर में नहीं है, वो आत्मा में है। वो तो उसका जो खजाना है वो आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा को कहते हैं। सच्चिदानंद रूप है आत्मा का, भगवान का सच्चिदानंद रूप है, भगवान का अंश है आत्मा, इसलिए उसका भी सच्चिदानंद रूप है। इसलिए जैसे एक ज्ञान हमको शरीर के चलाने के लिए जरूरी है, ऐसे एक ज्ञान आत्मा का, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। तो इस वक्त दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव हो गया है, वो थोड़ा दुर्लभ हो गया है, बहुत मुश्किल मिलता है। भगवान आके कहते कि भगवत गीता में चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। भगवान कहते ये ज्ञान मैंने पहले दिया, किसको दिया? भगवान कहे बोला सूर्य देव को दिया, मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया। अब बताइए कितने सूर्य दुनिया को प्रकाश देते हैं, एक ही सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाश देता है कि नहीं देता है? कभी छुट्टी किया सूर्य ने? कभी ऐसा एक दिन है कि सूर्य आपको प्रकाश नहीं दिया, नींद से नहीं उठाया आके? अब एक भगवान ने उदाहरण पहला दिया कि मेरा डिसाइपल इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये अविनाशी ज्ञान पहले मैंने विवस्वान सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने मनु को दिया, मनु से हमारा नाम मानव हो गया, हमको मानव इसलिए कहते हैं हम मनु की संतान है। तो मनु को ये ज्ञान दिया गया, मनु ने ये ज्ञान फिर आगे अपने बच्चों को दिया, इक्ष्वाकु को, ऐसी परंपरा ये चली। तो ये दिव्य ज्ञान भगवान देता है, दिव्य ज्ञान भगवान देता है, या भगवान के प्रतिनिधि साधु संत सद्गुरु देते हैं। तो ये ज्ञान ऐसी परंपरा से आता है। एक ये संसार को संसार सागर कहते हैं, ये तो सब बोलते हैं संसार सागर, मालूम है संसार सागर, संसार सागर, सागर का मतलब तो सबको पता है समुद्र, और संसार का अर्थ होता है जन्म मृत्यु। संसार का मतलब जो बदलता रहे, हमेशा न रहे, जैसे सड़क है, सड़क का अर्थ क्या है? उसके ऊपर कोई खड़ा नहीं हो सकता है, चलना ही पड़ेगा। तो संसार का मतलब जो चलता रहे, जैसे गंगा, अभी कभी आप हरिद्वार जाओ गंगा में स्नान करो तो उसी पानी में दो बार स्नान नहीं कर सकते, आपने डुबकी लगाई वो पानी चला गया, आप दूसरा पानी भी दोबारा आएगा। तो ये संसार ऐसे प्रवाह के रूप में चलता रहता है, ये संसार रुकता नहीं है। संसार तो कोई सागर को तैरना चाहे तो कोई सागर तैर के पार कर सकता है कि दुनिया में? तो सागर को पार करने के लिए क्या साधन है? तो दुनिया में सागर को पार करने के लिए क्या साधन है? नाव चाहिए। आप तो नाव दे दें तो अपने आप नाव चली जाएगी, नाव में चढ़ के चले जाओगे सागर में ना, चले जाओगे। फिर और क्या चाहिए? करणधार चाहिए, नाव को चलाने वाला चाहिए, कैप्टन चाहिए नाव का। अच्छा, कैप्टन भी मिल जाए तो कैप्टन को पहले पूछेंगे भाई तुम कहीं सीखे हो कि नहीं सीखे हो नाव चलाना, कि पहले तुम्हारा कोई उस्ताद है कि नहीं है, तुम्हारा कोई गुरु तो रहा होगा ना। उसके बाद भी एक और चीज चाहिए, वो क्या हो? ये वो क्या चाहिए? जिस रूट पे जाते हैं उसकी जानकारी चाहिए, मैप चाहिए, पूरा नेविगेशन का मैप चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो कोलंबस की तरह गया था इंडिया ढूंढने, पहुंच गया अमेरिका, यही ना। कोलंबस कहाँ जा रहा था? बोला इंडिया जा रहा हूँ, और पहुंचा जाके कहाँ? अमेरिका। अगर नेविगेशन नहीं होगी कैप्टन के पास तो जहाँ जाना है वो तो मंजिल मिलेगी नहीं, और कहीं जाके वो पहुंचेगा, उसी को इंडिया कहता है, वो रेंज इंडियन है, अभी तक रेंज इंडियन रह गया लेकिन वो कहते हैं हम अमेरिकन है। तो ये बड़ा बुद्धिमानी, अगर मैप नहीं है नेविगेशन के लिए, आपके पास मैप नहीं है। अच्छा, तो अब इसकी उदाहरण को शास्त्र कहता है, ये मानव शरीर बहुत अच्छा जहाज है, नौका है। ये मानव शरीर दुर्लभ तो है, क्षण है, थोड़े दिनों के लिए, सदा के लिए नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी नौका है, द ब्यूटीफुल बोट। बाकी शरीरों को ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, उसके लिए ये इज नॉट पॉसिबल फॉर। पर मानव शरीर स्वल्पम, थोड़े दिनों के लिए है, पर सुलभम, बहुत सुलभ है। किसमें क्या सुलभ है? कि ये नौका है, नौका तो है, भव सागर पार किया जा सकता है, पहले चाहिए करणधार, कैप्टन, गुरु, नेविगेशन करे, इसका मतलब इस शरीर को सदमार्ग के ऊपर चलाए। लेकिन दूसरा चाहिए शास्त्र, वो मैप है, शास्त्र जो है वो नेविगेशन के लिए मैप है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र शब्द और शस्त्र शब्द ये दोनों, और तीसरा शिष्य, ये तीनों शब्द संस्कृत में एक जगह से निकलते हैं। भाई सरकार ये पुलिस क्यों अस्त्र शस्त्र क्यों उठाती है, हथियार क्यों उठाती है, लोगों को नेम में रखने के लिए, गलत काम नहीं करे सीधे रास्ते चले के लिए। शास्त्र काय के लिए है, गलत रास्ते से बचा के सीधे रास्ते के चलाने के लिए। जैसे लाल बत्ती है काय के लिए गवर्नमेंट लगाइए, गाड़ी आपका टाइम खराब करने के लिए लगाइए, नहीं आपको एक्सीडेंट से बचाने के लिए लगाइए। ऐसे शास्त्र ने नेम बना लिया है कि ये लाल बत्ती है इसको क्रॉस करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये ग्रीन लाइट है यहां से जाओगे तो आपका सुरक्षित मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो शास्त्र हमारे लिए मैप है, नेविगेशन है, गुरु कैप्टन है। मानव शरीर, ये भागवत का श्लोक है, ये मानव शरीर बहुत अच्छी नौका है, तो फिर भवसागर पार हो सकता है और अपने मंजिल अपने घर जा सकते हैं। ये किसी का घर नहीं है, ये दुनिया माया की है, इस दुनिया का नाम है माया की, ये माया का खेल है, कहते हैं ना ये दुनिया माया का खेल है। और माया को थोड़ा सा चेंज करके तो हिंदी में बोलेंगे, जिसको बोलते हैं दुनिया मायका है। मायके का क्या अर्थ होता है, शादीशुदा स्त्री मायके में रह सकती है क्या सदा के लिए सुखी? हाँ, तो मायका का मतलब है वो जगह जो पति की जगह नहीं है, वहां सदा नहीं रह सकते। तो ये संसार हम सबका मायका है, असल में ये मायका है, पति तो भगवान है सबका, जगन्नाथ जगत पति वही है, उसी को कहते हैं आप हमारे सर्वस्व। तो जब तक अपने घर नहीं जाएंगे तब तक इस संसार में भटकते रहेंगे। तो वहां जाने के लिए कौन ले जाएगा, कैप्टन नायक गुरु सदगुरु ले जाएगा, पर शास्त्र का साधन उसके साथ होना चाहिए। शास्त्र गुरु ये दो चीजें ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में कहते हैं, माया मुग्ध जीवेरा नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान। इस दुनिया में माया के नशे में इतने लोग हैं, सो मच इंटॉक्सिकेटेड बाय द इल्यूजरी एनर्जी। ये जो माया है, माया का अर्थ क्या है, जो है वो ढक दे, और वह आवरण आत्मिक कहते हैं, व्हाट व्हिच इज नॉट, जो है असली है उसको ढक दे और जो नहीं है वो दिखा दे, उसको माया कहते हैं। माया के दो काम है, जो नहीं है वो दिखा देती है और जो है उसको ढक देती है। अब देखिए माया ने कर किया दिया, ये शरीर सदा नहीं रहेगा और इसी के पीछे हम लगे हुए, इसी को पोषण करना, इसी को पालन करना, इसी को खिलाना, इसी को पिलाना, और जो असली आत्मा है उसको ढक दिया। जो असली हमारी पहचान है उसके बारे में तो हमारे पास समय नहीं है और सारा जिंदगी इसके ऊपर गुजर गई। तो इसको कहते हैं माया का, ये दुनिया माया की है, ये मायका है, यह हमेशा कोई नहीं रह सकता है। सदा के लिए सुखी रहना है तो पति के घर में जाना पड़ेगा, इसलिए भगवान को पति कहते हैं, वो जगत पति है, उसका नाम ही जगत पति है, वो जगत पिता भी है और जगत पति भी है, ये अद्भुत उसका नाम है। अगर आप पिता मानोगे तो बालक बन जाओ, पति मानोगे तो उससे प्रेमी बन जाओ, ये सब संबंध भगवान ने के साथ हमारे नित्य संबंध है। तो ये जीवन में ये दिव्य ज्ञान अति आवश्यक है, इसके बगैर मानवता में शांति सुख नहीं मिलेगा। दुनिया में सब कुछ हाथ आ जाए, धन आ जाए, पुत्र परिवार घर मोटर गाड़ियां आ जाए, फिर भी शांति आज तक किसी को मिली नहीं है। सारी दुनिया वाले ऐसे ही कहते चले गए हैं, और जिसके पास कुछ नहीं है उनको बेफिक्र शांत में देखा है, क्योंकि वो आत्मा का आनंद का अनुभव कर चुके हैं। तो उनके लिए संसार में कुछ आए तो क्या बात है, नहीं आए तो भी क्या बात। तो ये बहुत जरूरी है कि हर मानव को आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। उस दिन वहां कथा में एक हमने छोटा स्टोरी बताया था, कभी तो बच्चे उसका बहुत सुंदर ड्रामा करते हैं। एक राजा की चार पत्नियां थी, एक का नाम काया था, उसको राजा तो अपने साथ रखता था, कहीं भी जाता था साथ ले जाता था, सबसे अच्छी चीज उसको देता था, उसको कभी अलग नहीं किया अपने से। दूसरी का नाम कंचन था, उसको देखे उसका मुंह देखे खुश हुए, किसी को मुंह देखने ना दे और उसको देखे के बगैर कहीं जाए नहीं, उससे तो इतना प्रेम था कि हमेशा वो उसके दिल और दिमाग पे रहती थी। तीसरी का नाम कामिनी था, उसके साथ घूमने जाए, पिकनिक पे जाए, बाहर जाए। और चौथी का नाम करुणा था, उससे कभी बात भी नहीं किए, कभी पूछा भी नहीं उसको जीवन भर। समय बीत गया, राजा बीमार हो गया, राजा पलंग के ऊपर मरणिंग हालत में, मरने के स्थिति में है, भयभीत हो गया। मरने के समय आदमी को भय क्यों होता है, क्योंकि ये जो चित्रगुप्त है ना, ये वो रील सारी का एक्शन प्ले करता है कि तुमने क्या क्या किया है। और जब हम देखते हैं, अरे वहां इसको मालूम है ये सब कुछ, ये सब इसने कब का रिकॉर्ड किया है, ये सब इसको मालूम है। वो और कोई देखो महात्मा साधु जाते समय हंसते हो जाते हैं, क्यों? वो देखते हैं अरे ये भी अच्छा काम, अच्छा इसको भी याद है कि हम यहाँ सत्संग किया, उस दिन हम यहाँ कथा कर रहे थे। तो ये रील में सब भर जाता है। चित्रगुप्त का काम पक्का है। सो वो डरते हुए राजा कहता है, काया मुझे डर लग रहा है, तू मेरे साथ चल। काया बोलती, महाराज मैं नहीं चल सकती। नहीं नहीं, तुम तो चलना पड़ेगा, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं है, तुम कैसे मुझे छोड़ोगी? बोला, महाराज मैं नहीं जा सकती। महाराज ने दुखी होकर कहा, कंचन तुम तो चलो, तुम्हें तो मैंने किसी को देखने को नहीं दिया, तुमको देख के मेरा जीवन सारा मैंने बिताया, तुम चलो ना। कंचन ने कहा, महाराज तुम्हारे जाते ही मैं दूसरी शादी कर रही हूँ, मैं नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ जा सकती। महाराज बेचारा दुखी होकर और रोता है, कामनी तुम तो मेरा साथ दे दो, तुम तो चलोगे कि नहीं चलोगी, तुम्हारे साथ कितना मैंने समय बिताया। बोला, महाराज अगर आपका प्राण निकल गया तो शमशान तक जा सकती हूँ, उससे आगे मेरे को काम है बहुत सारे, मैं नहीं चल सकती हूँ। अब राजा बहुत दुखी होकर रोने लगा कि सारी जिंदगी जिनका मैंने पालन पोषण किया, जिनको खिलाया पिलाया, जिनको देख के मैं सुखी रहा, जिनके साथ घूमा फिरा, उनमें से एक भी साथ जाने को नहीं है, सारी जिंदगी का मेरा किया धरा पानी में चला गया। तब करुणा कहती है, ये प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछेंगे महाराज, किस मुंह से पूछूं मैं कभी आपके साथ, मैं आई नेवर वॉक विद यू, नेवर टॉक विद यू, मैंने कभी आपसे बात नहीं की, कभी आपसे बोला नहीं, तो आपसे ये कैसे मैं पूछूं, मुझे शर्म आती है। बोला, नहीं पूछो, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, आप चिंता मत करो महाराज। अब तो महाराज बेचारा आंखों से आंसू लेके उसके चरणों में गिर पड़ा कि जिसके लिए जिंदगी दे दी उनमें से कोई हाथ नहीं आया, और जिसको मैंने कभी नहीं पूछा वो अभी भी मेरा साथ देने वाली। ये स्थिति हमारे जीवन की है। पहली पत्नी काया ये शरीर है, सदा साथ लेके चलते हैं, सब कुछ इसको अच्छा खिलाते पिलाते हैं, कभी अपने से अलग नहीं करते हैं, और अंत समय में आज तक किसी के साथ ये शरीर गया नहीं, ये शरीर साथ नहीं देता है। कंचन ये धन दौलत है जिसको देख के बड़ा खुश होते हैं, लेकिन अंत समय वो कहते, तुम जाओगे तो दूसरा इसका मालिक बन जाएगा, ये तेरे साथ जाने वाली नहीं, मैं दूसरा इसका मालिक बन जाएगा, उसका पति दूसरा हो जाएगा, और ये कामनी रिश्तेदार नातेदार अभी उठो बैठो खाओ पियो घूमो, लेकिन अंत समय में शमशान से आगे कोई नहीं जाएगा। वो करुणा परमात्मा है जो सबके हृदय में बैठा हुआ है, जो हमारे को कभी नहीं छोड़ता है, उसको शास्त्र ने कहा है अज्ञात मित्र है, वो कभी नहीं छोड़ते, हम नहीं उसको याद करते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता है। इसलिए कहते हैं इस दुनिया में हम उन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं जो हमको जानते भी नहीं है, हम जिन चीजों के पीछे पड़े हैं वो हमको जानते भी नहीं है। क्या आपका घर आपको जानता है? अगर घर से बाहर जाते हो तो आपको पीछे कहता है, चाचा कभी बोला है घर में राम राम बोला है? हाँ, और घर कोई अच्छा आपने बनाया हो अपने गांव में और अच्छा पैसा मिले बेच दो, कोई कभी घर रोया है कि भैया आपने कितना प्रेम से बनाया? अरे आपके घर में रहने वाला कॉकरोच दूसरे घर में जाता है तो कहता है ये मेरा घर है, वो भी कहता है ये जो वो भी अपने समाज में कहता है ये मेरा घर है, मैं इसमें रहता हूँ। तो वो तो हमारी बुद्धि तो उतनी हो गई इसमें कि ये घर मेरा है और ये घर तेरा है। ये सोने के सुंदर सुंदर पहने हुए आभूषण कभी कहीं गिर जाए पीछे आपको बुलाते हैं कि आ जाओ भाई कहाँ जा रहे हो, कितना सुंदर तेरा मंगलसूत्र प्रेम से तुम्हारे को दिया हुआ है, उठा लो, कोई बोलेगा? पूछता है कभी आपको? जिन चीजों के पीछे हम लगे हुए वो हमको जानती नहीं, ये सच है कि नहीं? और ये तो हुई निर्जीव चीजें जिनका सांस नहीं है, और जो संसारी लोग जिनको हमने कैसे भी रिश्तेदार नातेदार बमान रखा है वो हमको पहचानते नहीं। क्या वो हमको पहचानते हैं कि हम आत्मा है? वो हमको आत्मा के नाते पहचानते हैं क्या? नहीं, शरीर के नाते पहचानते हैं, शरीर से क्या उनको सुख मिलना है उतना ही जानते हैं, और जब शरीर से आत्मा निकलते तब कहते हैं वो चला गया, वो शरीर में तो कोई किसी की आसक्ति नहीं है, कोई घर में शरीर को रखने को तैयार नहीं, वो शरीर को रखने की तो दूर बात है, शमशान से अपने बाप की हड्डियां कोई घर में नहीं लाता है, वो शिवालय में रख के आएगा कि बाप भूत हो गया है? ये तो लोगों की तो देखो, घर बनाने वाले बाप की हड्डियां घर में नहीं लाएंगे, और मुझे आश्चर्य लगता है बकरे और मुर्गे की हड्डियां घर के फ्रिज में पड़ी होती हैं, तो उनसे डर नहीं लगता है। उससे डर नहीं लगता है, बाप की हड्डियों से डर लगता है। ये आश्चर्य है, ये समाज का कितना अंधा हो गया है, कुछ पता नहीं लगता है क्या कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या बात कर रहे थे? जो जिन चीजों को हमने अपना मान के रखा है वो हमको जानती नहीं है, और जिनको हम अपना समझते हैं वो हमको पहचानते भी नहीं है जीवन भर। वो तब पहचानते हैं जब शरीर छूटता है, तब कहते हैं वो चला गया। और जो इसलिए जो महाप्रभु का श्लोक है ना, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वत कृष्ण, भगवान का ज्ञान अपने आप किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि माया का मोह इतना प्रबल है कि अपने आप कृष्ण कृपा कैला, भगवान ने बड़ी कृपा की है। क्या कृपा किया? दिया वेद पुराण, तीन प्रकार से भगवान हमारी सहायता करते हैं, बाय थ्री वेज गॉड हेल्प अस। स्वयं रूपे, हर एक हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान बैठा है, हमेशा हमारे को इंतजार कर रहा है कि कब ये मुझसे पूछेगा, मैं इसका मार्गदर्शन करूं। जस्ट वेटिंग। उपदृष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता, महेश्वरा, क्या है परमात्मा? उपदृष्टा, ऊपर बैठ के देखता रहता है। उपदृष्टा अनुमंता, अनुमति देता है। बहुत सी चीजें हमने इच्छा की थी, हमको भूल गई, याद कराता है कि तुमने ये पहले याद कर या इच्छा की थी, इसको पूरा कर लो। अनुमंता, भरता, वही सब कुछ पालन पोषण कर रहा है। इस दुनिया में सांस लेने के हली हवा कोई गवर्नमेंट नहीं देती है, भगवान ने बनाई हुई है। हवा कहीं सरकार से मिलती है क्या? बाजार से मिलती है हवा? नहीं। और अस्पताल में सरकारी हवा लोगे तो बिल देने में पता लग जाएगा, और जो उसका बिल है वो अगर काउंट करके दिन रात की आप हवा खाते हैं इतना बिल लगे, तो कोई आदमी यहाँ पैसा है ही नहीं जो उसको पूरा भर सके। भर सकते हैं उसका पैसा? नहीं भर सकते। तो मुश्किल है कि नहीं है? तो भरता वही है जो सब कुछ दे रहा है। ये समुद्र का पानी चारों ओर पड़ा है, कोई पी सकता है क्या? लेकिन मुफ्त में इसको मीठा करने का कितना बड़ा अच्छा प्रबंध किया हुआ है। सूर्य को सुबह उगाता है, ये खारा पानी ऊपर जाके बादल बनता है, मीठा होता है कि नहीं होता है? और फिर बरसात में नीचे गिरता है कि नहीं गिरता है? इतनी बड़ी ऑपरेशन फ्री में चल रही है कि नहीं है भगवान की? कोई है पंप है, कोई पाइप है? नहीं। फिर कितना सुंदर मीठा पानी मुफ्त में सबके लिए प्रबल है। वो पानी कोई कहीं से? ये दुनिया में एक बहुत बड़ा एक मंडल बना रखा है, आगे आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा। क्या समुद्र टूट जाएंगे क्या? क्या सूरज उगना बंद करेगा क्या? नहीं। और भगवान ने तो प्रिजर्वेटिव डाल के समुद्र में इतना पानी रखा है कि कभी सूखेगा नहीं, और सूर्य कभी ऐसा नहीं है कि उगना बंद होगा। सिर्फ पानी बरसेगा नहीं, या इतना ज्यादा बरसेगा डुबा देगा, या बिल्कुल नहीं बरसेगा अकाल हो जाएगी, अगर हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो। पानी कभी खत्म नहीं हो सकता है, ये प्रोसेस कभी समुद्र खत्म होगी क्या? समुद्र नहीं सूख सकते हैं, तो पानी कैसे खत्म होगा? ये गंदा पानी किसने किया? इन्होंने गंदा पानी किया और फिर कहा कि ये अभी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए अभी हम आपको मिनरल पानी पिला रहे हैं। गंदा भी फैक्ट्री वालों ने किया, और वो दूसरी फैक्ट्री से बड़ी दूसरा अच्छा पानी बना के हमारे को दे रहे हैं। देखा, ये सीधी गंगा जमुना का इतना बड़ा निर्मल स्वच्छ जल बहता था, उस सारे को पॉल्यूट करके जिन्होंने पॉल्यूट किया वही पानी बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ा अधर्म का काम हो रहा है। सो पानी भगवान सबको देता है। आज तक दुनिया में कोई ऐसी मशीन बनी है जिसके अंदर एक दाना चावल का या गेहूं का बन जाए? सुना है कभी भाई राजू? अच्छा, ऐसी कोई मशीन बनी है घास डालो और दूध निकल आए? है कोई मशीन ऐसी? जितनी बड़ी साइंस ने प्रगति की है, अरे चारी गैया को इतना घास दे दो सुबह दूध निकालो, ऐसी मशीन भगवान ने कितनी अच्छी बनाई है। घास से दूध ले लो और धरती के अंदर एक दाना डालो और 3 महीने में 1 के 10,000 ले लो, इतना रिटर्न किसी बिजनेस में दुनिया में आज तक मिला है? 3 महीने में एक दाना डालो, एक दाना, जस्ट पुट 1 grain and get 10,000, इतना रिटर्न। या फाइनेंस वाले सारे, कैन यू मेक दैट मनी इन 3 months? ये धरती इज गिविंग, अर्थ इज गिविंग फॉर 1 grain 10,000 grain फ्री, 1 for 10,000 इन 3 months, इतना देती है। कितना? ये माता है, सबका पालन पोषण ये करती है, दुनिया नहीं करता है। तो ये सब कुछ भरण पोषण भगवान ने व्यवस्था की है कि नहीं की? ये दिल हमारी कौन चलाता है? सरकार चला रही है, सरकार तो बंद करने के चक्कर में इतने टैक्स लगाती हैं। वो बोलते हैं बहुत बड़ा धनी देश है, कभी कहते हैं अड़ोसी पड़ोसी, अब तो कहते हैं बोलते हमारे पास भिखारी नहीं है, हर रोड के ऊपर ऐसे भिखारी खड़ा है, डब्बे में पैसा डालो तब गाड़ी खड़ी करो। रोड के ऊपर भिखारी खड़े हैं, पहले आदमी खड़े होते थे, अब मशीनें खड़ी है, पैसा डालो पैसा डालो। इससे इतने तो हिंदुस्तान में भी नहीं है जितने यहाँ हमको भिखारी मिलते। जैसे नहीं डालोगे तो गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती। भगवान हृदय में बैठा हुआ है, वो चला रहा है हृदय में। हमारे किसी का मैसेज आया दिल को, दिल ने मैसेज भेजा है कि देखो मैं 24 घंटा तुम्हारे लिए चल रही हूँ, तुम एक घंटा चलना शुरू करो नहीं तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ये सबके लिए मैसेज है, इसलिए मैं कहता हूँ अच्छा है। उधर किस यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, हार्ट सेंड द मैसेज टू मी दैट आई एम ऑलवेज वर्किंग आर वॉकिंग, इफ यू वॉक 1 आवर आई विल बी विद यू, इफ यू डोंट वॉक देन आई विल नॉट। तो इसका मतलब है कि चलो रोज का बैठो मत, कुछ न कुछ काम करो। सो भरता उपदृष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वर, ये महान ईश्वर है। भोक्ता हम जो कुछ भी देते हैं, हमारा जो कुछ भी असल में आनंद तो तब मिलता है भगवान को जब उनकी सेवा करते हैं, तो भोक्ता वो है। किस चीज का भोक्ता है कोई कहे, भोक्ता का मतलब होता है एंजॉय, भगवान एंजॉय है। भोक्तारम यज्ञ तपसम, किस चीज को भगवान भोगता है, यज्ञ को। भोग यज्ञ क्या, और भगवत गीता में यज्ञ का नाम है यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, ये भगवान का नाम जपना, इसको महान यज्ञ कहते हैं। और जब साथ बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं उसको संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। और कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही एक सरल से सरल साधन है जिसमें सब मिलकर भगवान का प्रसन्नता का। हमने राजस्थान में कई बार अपने गांव में देखा, बरसात नहीं, 24 घंटे कीर्तन किया ऐसे जैसे हम कर रहे हैं, और 24 घंटे पूरे नहीं हुआ बरसात आ गई, यज्ञ हो गया तो बरसात आएगी, इसमें कभी देर नहीं हुई है। हमारे जीवन में हमने ऐसे बहुत से अनुभव देखे हैं कि ये यज्ञ करेंगे तो बरसात आएगी। तो ये यज्ञ भगवान भोगता क्या है, यज्ञ भोगता है भगवान को, आपका धन नहीं भोगता। लक्ष्मीपति वो है, आप कह दोगे भगवान को लक्ष्मीपति वो है क्या हमें, हाँ जी लक्ष्मीपति तो वो है ना। लक्ष्मी दो प्रकार की है मालूम है आपको, एक लक्ष्मी चंचल है और वो जिसके ऊपर वाहन के ऊपर चढ़ के आती है वो उल्लू उसका वाहन है। दूसरी स्थायी लक्ष्मी है, वो हमेशा भगवान नारायण के साथ आती है और उसका वाहन गरुड़ है, वो गरुड़ के ऊपर आती है और गरुड़ के पंखों से वेद की धुनी चलती रहती है। तो जो गरुड़ के ऊपर लक्ष्मी आती है वो सदा रहती है, वो नारायण के साथ आती है। और जो उल्लू के ऊपर चंचल लक्ष्मी आती है उसका वाहन जैसा है ऐसा आदमी को बना देती है। क्या बना देती है, वो आदमी को न बाप का पता, न माँ का पता, न रिश्तेदार का पता, न नातेदार का पता, और रात को उल्लू की तरह जागेगा, दिन को सोया रहेगा। तो ये दो उल्लू लक्ष्मी के वाहन है। तो बात क्या कर रहे थे कि भगवान ने एक तो स्वयं रूप से बैठा है जो सबका पालन पोषण कर रहा है, दूसरा कैसे हमारी सहायता करते हैं, भगवान ने वेद शास्त्र दिया, वेद व्यास के रूप में स्वयं भगवान इस दुनिया में अवतार लेकर बहुत सा, एक नहीं, एक वेद को चार वेदों में विभाजित किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर उन वेदों को समझाने के लिए उपनिषद लिखे जिसका अर्थ है जो हमको ऊपर उठाए भगवान के पास पहुंचाने के लिए शिक्षा दें, फिर वो समझ में नहीं आए इसलिए पुराण लिखना शुरू किया, फिर भी महाभारत लिखने के उसके अंदर भगवद गीता को रखा, और फिर तब भी स्वयं संतुष्ट नहीं था, तब श्रीमद् भागवत का उन्होंने नारद जी की प्रेरणा से कलयुग के अंदर लोगों को दुख से बचा के सुख के मार्ग पे ला जाने के लिए भागवत का रचना किया। और ये मंत्र जो हम आपके सामने, ओम नमो, ये भागवत का पहला मंत्र है। भागवत शुरू होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे पहला शुरू इस शब्द से होती है भागवत, ये 12 अक्षर का मंत्र वैदिक काल से चलता आया मंत्र ये है। नारद इसका ऋषि है, अनुष्टुप छंद है, श्री कृष्ण इसका देव है, आराध्य देव है। तो दूसरा भगवान ने अवतार लेके व्यास के रूप में शास्त्र दे दिया, लेकिन शास्त्र पढ़ने वाला कोई नहीं है, ये बड़ी बहुत बड़ी समस्या है। गांधी जी आज से 50-60 साल पहले रोया करते थे, 70 साल से पहले, कि ईसाई अपने बच्चे को बचपन में बाइबल पढ़ाता है, मुसलमान अपने बच्चे को कुरान पढ़ाता है, लेकिन दुख से भगवद गीता की शिक्षा अपने बच्चों को हमारे भारतवासी नहीं देते हैं, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। और गांधी के आश्रम में 12वां अध्याय भगवद गीता का नित्य निरंतर पाठ होता था, रेगुलर पाठ चलता था। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे समाज में कि बच्चों को बचपन में हम आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वो हम उसको कहते हैं वो इम्यूनाइजेशन जैसी है, जैसे बीमारी की इम्यूनाइजेशन करते हैं पोलियो की, ताकि टांग न खराब हो, दिमाग न खराब हो, इसके लिए आध्यात्मिकता शिक्षा बच्चों को देना आवश्यक है कि माता पिता की कैसे उनको आगे चल के सेवा करनी है, बड़ों का आदर कैसे करना है, धर्म और समाज के अंदर कैसे उठना बैठना है, ये मर्यादाएं आध्यात्मिक शिक्षा से आती है, उसका अभाव हो गया है। ये एक हमारे समाज में बहुत कम है, बाकी सब समाजों में अभी भी चल रहा है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी अनिवार्य है। फ्राइडे क्लास बच्चों के लिए कहीं ना कहीं चलनी चाहिए जहां उनको संस्कार सिखाया जाए। ये बहुत सिंपल संस्कार थे पुराने जमाने में, सब समाप्त हो गए। ये जानकारी तक नहीं है लोगों को कि बच्चों को, छोटे बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती थी। ब्रह्मचार्य 25 वर्ष तक पढ़ते हो बच्चे, तब तक अपनी रक्षा करो, ये शिक्षा शिक्षा ही समाप्त हो गई। इसलिए बहुत बड़ा दुखदायक विवाह, सब विवाह में सब दुखी है, कोई कहीं सुख की सुख दिखता नहीं है, क्योंकि शिक्षा पहले से नहीं है, फाउंडेशन ही नहीं है जीवन की। तो दूसरा भगवान ने, एक तो भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, दूसरा भगवान ने वेद पुराण दिया, तीसरा गुरु भगवान अपने प्रतिनिधि के रूप में गुरु को भेजते हैं जो हमारे को भगवान की पहचान कराता है। हम तो भगवान को नहीं जानते हैं, लेकिन गुरु भगवान की पहचान कराता है और उससे मिलने का साधन बताता है और साथ देता रहता है और समय आके लेके भी जाता है भगवान के धाम तक, यहाँ तक उसने जवाबदारी उठाई है। हम कहीं नहीं चले उसके कहने के ऊपर तो उसको दोबारा आके लेना आना पड़ता है, उसको हम कष्ट देते हैं अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो ये तीन चीजों से भगवान हमारी सहायता करना चाहते हैं। एक तो बहुत मानव शरीर दुर्लभ हमको मिला है, जो बहुत अच्छी नौका है, बहुत अच्छा जहाज है भवसागर को पार करने के लिए। शास्त्र उसके लिए बहुत अच्छी नेविगेशन है। अगर शास्त्र में देखेंगे तो कौन से रास्ते जाना चाहिए, कौन से नहीं जाना चाहिए, कहाँ कुन है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ आइसबर्ग है और कहाँ से सेफ रास्ता है, ये शास्त्र ही बता सकता है और कहीं से नहीं पता लगता है। और फिर चलाने वाला कैप्टन भी चाहिए, हम चला नहीं सकते हैं, वो उसको जानता है, उस रास्ते पे आया आता जाता है, उसने शिक्षा ग्रहण की है, तो उसका भी सहायता लेना बहुत जरूरी है, तब जीवन आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर चलेगा। नहीं तो इस दुनिया के अंदर महाप्रभु ने तो डेढ़ घंटा भी नहीं, मेरे ख्याल 45 मिनट के एक घंटे में भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को दी थी, वो तो समझ गया, उसने उसके ऊपर एक्ट भी किया और अभी तक दुनिया के सब लोग उसको पढ़ के समझने में ही समर्थ नहीं है। तो कितना बड़ा बुद्धिमान रहा होगा अर्जुन के वार फील्ड पे लड़ाई शुरू ऑलमोस्ट हो चुकी थी, उसके बीच में उसको समझने का उसमें सामर्थ्य था, और अभी तक हम तो उसको समझने का प्रयास करते हैं तब भी समझ में आना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन 10 दिन तक प्रयागराज में वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहते हैं, हजारों लाखों नहीं असंख्य जीव इस धरती के ऊपर हैं, आधे चल सकते हैं आधे चल नहीं सकते हैं, कुछ अचल है कुछ चल है, जो चल सकते हैं उसमें भी आधे आकाश, कुछ आकाश में उड़ते हैं कुछ जल में रहते हैं, धरती के ऊपर रहने वाले कम है, धरती के ऊपर रहने वाले जो है पशु पक्षी उनमें मानव सबसे कम है, तो सब जीवों में मानव जूनी सबसे कम है, और मानव जूनी में भी आधे तो धर्म को जानते ही नहीं, आधों को तो यह भी पता नहीं है कि धर्म होता क्या है, वो तो पशु जैसा जीवन अपना व्यतीत करते हैं। आधे जो धर्म को मानते हैं वो धर्म को जानते हैं, उनमें से आधे जानते नहीं कि धर्म है क्या। जैसे हमको आप लिखते तो हैं फार्म में कि हमारा रिलीजन हिंदू रिलीजन है, लेकिन वो है क्या उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को, बहुत नहीं लोगों को है कि हमारा धर्म क्या है। ये हमको हम मानते हैं लेकिन जानते नहीं है धर्म को, और जो थोड़े बहुत इसके ऊपर चलते हैं उसमें बहुत कर्म करने में सब लगे हुए, कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, ऐसे करोड़ों कर्म करने वाले में एक मुश्किल से ज्ञानी होता है जो शरीर को आत्मा के अलग समझता है, आत्मा से अलग समझा है और आत्मा के उद्धार के लिए जो आत्मज्ञान का चिंतन करता है, थोड़े समय बैठ के भगवान का ध्यान करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान का श्रवण का कीर्तन श्रवण करता है। कोटि ज्ञानी मध्य कोई एक मुक्त, ऐसे करोड़ों ज्ञानी हो उनमें से कोई मुश्किल से एक मुक्त होता है, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, ये महाप्रभु कहते हैं। ऐसा एक भगवान का भक्त मिलना जो सारे विश्व में जाके लोगों को भगवान के बारे में सुनाए वो बहुत दुर्लभ है, अपना जीवन जोखिम में डाले और दूसरों का उद्धार करे, इसको बोलते हैं ये वो बहुत दुर्लभ है वैष्णव उस जनता को जानिए जो पीर पढ़ाई जाने रहे जो दूसरे का दुख देख नहीं सकता है और दूसरे को सुखी करने के लिए अपने सुख को ऐसा एक तो माँ होती है अपने लिए दुख कष्ट कितना भी हो लेकिन बच्चे को सुख मिलना चाहिए ये माँ के ऐसे माँ का भाव होता है इसलिए भगवान को पहले कहते तुम्हें वो माता भगवान के लिए पहला शब्द माता का संबोधन होता है क्योंकि माँ वो एक ऐसी मूर्ति इस धरती के ऊपर है जो स्वयं दुख सहने को तैयार है रात सारी जागने को तैयार है लेकिन बच्चा सुखी हो जाए उसके मन में एक ही होता है कि बच्चा कैसे सुखी हो ऐसे भगवान को माता इसलिए कहते हैं वो माता का भगवान का माता का रूप वो राजा रानी भगवान का माता का रूप है ये हरे कृष्ण मंत्र में सीधा माता को प्रार्थना है हरे 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 का मतलब हे राधे हरे का मतलब हे भगवान की अंतरंग शक्ति तो वो हरे हे राधे वो सीता भी उसी का विस्तार लक्ष्मी नारायण के साथ हो जाएगी उसका ही छाया का रूप में के दुर्गा इस संसार का संचालन चलाती है तो ये हर माता के रूप में भगवान को प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें वो माता चाहे पिता फिर आप पिता भी आप ही हो पालन पोषण आप करते हैं अभी बोला भगवान ही सबका पालन पोषण कर रहे हैं सखा भी आप हो ये दुनिया में भगवान सबके हृदय में सखा है उसके लिए कहा है सखा अज्ञात मित्र वो भागवत का अज्ञात मित्र हम उसको जानते नहीं है लेकिन वो हमारा फ्रेंड है वो सखा है हमारे हृदय में बैठा वैसे भगवान जैसे अर्जुन के रथ का सखा सारथी बने और सखा बने ऐसे भगवान सबके सारथी है सबके हृदय में बैठे हैं इस शरीर को कभी कहते हैं रथ है इसकी इंद्रियां इसके घोड़े हैं और ये संसार महाभारत के अंदर से गुजरना है अब अगर मन इसमें कहते हैं इंद्रियां घोड़े हैं मन इसका लगाम है और बुद्धि इसमें सारथी है जिसने भगवान को बुद्धि में बिठा दिया तो भगवान ने मन को संभाल लिया तो इंद्रियां सही मार्ग पे चलेंगे तो मानव जीवन में आदमी भवसागर से पार हो जाएगा आज भी कृष्ण सारथी बनने को तैयार है केवल दो काम करने हैं बुद्धि में उसको बिठाना है और मन उसके हाथ में देना है क्योंकि मन हम संभाल नहीं सकते हैं ये मन ही हमारे को बार बार दुनिया में जन्म लेने के लिए बाध्य कर देता है क्योंकि मन इच्छाओं का बहुत बड़ा पेटारा है और कभी इच्छाएं समाप्त होती नहीं है और इच्छाओं के कारण दूसरा जन्म लेना पड़ता है जब देखो इंद्रियों के न घोड़े भंगे उनको संयम के कोड़े लगे इंद्रियों के घोड़े इधर इधर नहीं भागने चाहिए ये जो और इसको संयम के कोड़े लगने चाहिए वो कौन लगाएगा जो अच्छी तरह से चलाने वाला ड्राइवर होगा वो गलत रास्ते से बचा लेगा देखो इंद्रियों के न घोड़े भगे इनको संयम के कोड़े लगे गोविंद गोपाल गाते चलो हरि नाम का खजाना लुटाते चलो ये भगवान का नाम खुद लो और भगवान सबको सुनाते चलो और भगवान के हाथ में अपने जीवन की बागडोर दे दो पुराने जमाने में कहते थे मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ वो डोरी क्या है डोरी मन है हमारा मन हमसे नहीं संभलता है भगवान इस मन को तुम संभालो वो डोरी का अर्थ है मन जो लगाम होता है उसी को डोरी बोलते हैं मेरी डोरी तेरे हाथ है भगवान तुम्हारे हाथ में ये डोरी देता हूँ आप इसको संभालें आप मेरे को इस भव सागर से पार निकालें और दुख का कारण सिर्फ एक ये भगवान को भूलना दुख का कारण है और कोई दुख का कारण नहीं दुनिया में एक ही दुख का कारण है अनादिकाल जीव बाहर मुख अनादिकाल जीव कृष्ण बाहर मुख अतएव माया देता संसार दुख भगवान को भूलने के कारण ये माया संसार का दुख देती है बस एक काम करना है भगवान को याद करो दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से सारे पाप नाश हो जाते हैं प्रणामो हरि भगवान को प्रणाम करने से दुख शमनम भगवान हरि को प्रणाम करने से दुख चले जाते हैं तो ये भागवत अंत भागवत पूर्ण होता है दो चीजों से भगवान का कीर्तन साथ परिवार बैठ के करे तो पाप नाश हो गए और भगवान को प्रणाम करे तो पापों का फल दुख नाश हो गया तो दो ही काम करने हैं भगवान का नाम जपना है और भगवान को प्रणाम करना है बहुत आसान है कोई बच्चा भी कर सकता है इसमें कुछ मुश्किल तो है नहीं भगवान का नाम तो सभी जप सकते हैं बोला कहते एक पेड़ के ऊपर 1000 पक्षी बैठे हो 2000 पक्षी बैठे हो लेकिन एक आदमी ताली बच्चा बजाए सब उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे एक बच्चा भी पेड़ के ऊपर कितने भी पक्षियों ताली बजाए उड़ जाएंगे ना तो ये पेड़ रूपी शरीर इसके ऊपर कई पाप के पक्षी हैं भगवान के नाम के ताली बजाई कीर्तन किया सब उड़ गए वो महाराज ने कहा कि सब उड़ जाएंगे किसी ने बोला महाराज कहाँ जाके बैठेंगे वह जो नहीं जपता है वो खाली बैठा है उसके ऊपर जाके बैठ जाएंगे
तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोल श्री कृष्ण भगवान की। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, दो चार मिनट के लिए, नहीं तो यहाँ सत्संग को विराम देंगे, फिर प्रसाद सबके लिए खाइए आनंद से। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, क्वेश्चन, कमेंट? नहीं? हरे कृष्ण।